इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम भी अपने आबाए किराम की तरह इस्लाम की हिफाज़त करते रहे। आपने दीन की सच्चाई में शक करने वालों और खुदा के मुनकरों के साथ मनासरे भी किए हैं और उनके सवालों के दलाइल के साथ तसल्ली बख्श जवाब दिए। दीन में शक करने वालों में से अगर कोई शख्स इमाम की खिदमत में आ जाता तो आपकी सदाकत का कायल हो जाता और मुतमईन होकर यही कहता हुआ वापस जाता था, अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, सूरह इनाम आयत नंबर 124, के खुदा बेहतर जानता है अपनी रिसालत कहाँ करार दे। आयतुल्ला सैयद अली कहते हैं कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने भी अपने अमल के ज़रिए जिहाद करके हमारे लिए जो दर्स दिए हैं उनमें एक ये भी है कि जब कभी मुनाफिकीन रियाकारों से वास्ता पड़ जाए तो हिम्मत से काम लेते हुए होशियारी के साथ मोमिनीन को उससे बाखबर करना चाहिए और उन्हें दुश्मन के साथ मुकाबले के लिए तैयार किया जाए। अगर दुश्मन, कोई भी दुश्मन, खुलेआम अपनी दुश्मनी का इजहार करता है और वो रियाकारी का मुजाहरा नहीं करे तो उससे निमटना आसान होता है, लेकिन कोई भी दुश्मन जब अपने चेहरे पर तकद्दस का नकाब डालकर दीन की बातें करने लगे तो फिर लोगों के लिए ऐसे दुश्मन की पहचान ही मुश्किल हो जाती है। वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में, बल्कि पूरी तारीख में, ताकतवर लोगों की यही कोशिश रही कि जब वो सामने आकर मुकाबला करने से आजिज़ हो जाएं फिर रियाकारी मुनाफिकत से काम लेते हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में सामर्रा शहर में बुज़ुर्ग शिया अच्छी खासी तादाद में जमा हो गए थे। इमाम ने उन्हें मुनज़्ज़म किया और इन शियों के ज़रिए खतूत और दीगर ज़राए से इमामत के पैगाम को इमाम अली मुकाम अलैहिस्सलाम पूरे आलम इस्लाम तक पहुँचाने में कामयाब हुए हैं। कुम, खुरासान, रै, यमन और दीगर दूर दराज के इलाकों और पूरी दुनिया में इन्हीं अफराद ने शिया मकतब फ़िक्र को फैलाया और इस मकतब पर ईमान रखने वाले अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन ये सब आसान नहीं था। इमाम को सख्तियों में, पाबंदियों में रखा गया था। इमाम को अपने मामला पोशीदा रखना होते थे क्योंकि इमाम हुक्मरानों के जेर निगरानी थे। इमाम ने तमाम काम 6 खुलाफा की शमशीरों के साए तले उनकी मर्जी के खिलाफ अंजाम दिए। शमशीरें भी वो जिनसे खून टपक रहा था बेगुनाहों का। सामर्रा में अच्छी खासी तादाद में शिया जमा हो गए थे और चूंकि उन्होंने अपना एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था लिहाजा तख्ते खिलाफत भी उनको नहीं पहचान पाता था। अगर पहचान लिया जाता सबको कत्ल कर दिया जाता। इन अजीम शख्सियात आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की एक दिन की कोशिश बरसों का असर रखती थी। इनकी मुबारक ज़िंदगी का एक दिन बरसों तक काम करने वाले एक गिरोह की कारकर्दगी से ज़्यादा असर डालता था। अगर इस्लाम में ऐसी अजीम शख्सियात ना होती जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के बाद इस्लामी तालीमात को ना सिर्फ इंसानी जहनों में बल्कि इस्लामी तारीख में ज़िंदा कर दिया, तो इतने बरसों के बाद इस्लाम को नई ज़िंदगी नहीं मिलती और वो इस्लामी बेदारी पैदा करने में कामयाब नहीं होता बल्कि धीरे धीरे ख़त्म हो जाता, कोई चीज़ बाकी ना बचती। ये जो इस्लाम सही और सालिम हालत में बाकी है ये आइम्मा मासूमी अलैहिस्सलाम की फ़िदाकारी, कुर्बानियों का, जद्दोजहद का नतीजा है। इमाम को मदीने से सामर्रा लाया गया था ताकि हुक्मरानों की निगरानी में रहें। अवाम के और इमाम के दरमियान हुक्मरान हाइल हो जाना चाहते थे, राब्ता मुनक़ता हो जाए इमाम का अपने शियों से, लेकिन हुक्मरानों ने ये देखा कि जो वो चाहते थे वो कोई खातिर ख्वाह नतीजा उनको हासिल नहीं हुआ क्योंकि 5वें इमाम और 6ठे इमाम के ज़माने की निस्बत इन बुजुर्गान के दौर में, यानी इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में शियों के आपस के जो ताल्लुकात थे वो पहले से ज़्यादा फ़ाल और मुस्तहकम थे। दुनिया के कोने कोने से खतूत लिखे जा रहे हैं, खुम्स वगैरह की रकूमात आ रही भेजी जा रही थी, अहकाम हासिल करते थे। किसी भी ज़माने में शियों के दरमियान ताल्लुकात और पूरे आलम इस्लाम में शिया तंजीम इन 3 इमामों के ज़माने की तरह नहीं फैली थी। आइम्मा पर इतनी सख्ती और पाबंदियों के बावजूद लोगों के उनके साथ गहरे ताल्लुकात थे। सईद शहदा की शहादत के बाद के हालात में 6ठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस बयान की गई है कि इमाम ने फरमाया, इर्तद्दन नासु बादल हुसैन इल्ला सलासा, यानी ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद 3 अफराद के अलावा सभी मुर्तिद हो गए थे। बिहारुल अनवार की एक रिवायत में 4 और बाज़ रिवायतों में 5 अफराद के नाम लिए गए, लेकिन इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में पूरे आलम इस्लाम से आपके रवाबित रहे, यहाँ तक कि बनी अब्बास को भी बेबस होना पड़ा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार उन्हें शियत की तरफ रुजू करना ही पड़ गया। बनी अब्बास के खलीफा के बारे में है कि उसने एक तहरीरी फरमान जारी किया था कि आइम्मा अहले बैत का नाम खुतबे में लिया जाए और बताया जाए कि अहले बैत हक पर हैं। लेकिन जब खलीफा के वज़ीर को इस बात का पता चला तो फौरन खलीफा के पास पहुंचता है और कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। वो ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कर सका कि नाऊज़ु बिल्लाह अहले बैत हक पर नहीं, बल्कि उसने ये कहा कि इस वक्त तिब्रिस्तान और दीगर इलाकों में कुछ लोगों ने अहले बैत के नाम पर क़याम कर रखा है, अगर आपकी ये बात उन लोगों तक पहुंच जाए तो वो लश्कर बनाकर आपकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। खलीफा ने वज़ीर से कहा कि तुम सही कह रहे हो और हुक्मनामे का ऐलान ना किया जाए, यानी ये लोग अपनी हुकूमत की वजह से डरते थे और अगर अकीदा कबूल भी कर लेते तो दुनिया और सल्तनत की मोहब्बत उनके एतक़ाद के दरमियान हाइल हो जाती थी। जैसा कि कहा गया है कि दुनिया की मोहब्बत तमाम खराबियों की, तमाम बुराइयों की जड़ है। उस ज़माने में शियों के पास आइम्मा की अहादीस पर मबनी कलामी और फ़िक़ही किताबें मौजूद थीं और शिया अफराद इमाम के वकीलों के ज़रिए इमाम से अपनी मुश्किलात का हल मालूम करते थे। खुद इमाम अलैहिस्सलाम भी उन लोगों को अपने ऐसे असहाब की तरफ भेजते जो मुद्दतों से इमाम के साथ थे और अहले बैत से मोहब्बत करते थे। आइम्मा किराम अपने वकील मुकर्रर फरमाते थे और ये वकील इमाम और अवाम के दरमियान राब्ते का ज़रिया बनते। इसके अलावा खुम्स की रकूमात भी वकीलों के ज़रिए आइम्मा तक पहुँचाई जाती। इसके अलावा फ़िक़ही और दीगर मुश्किलात के हल में भी ये वकील जो थे वो अहम किरदार अदा करते थे। लेकिन इसके साथ ये भी हुआ बाज़ औक़ात कि इन वकीलों में से कुछ अफराद इमाम से मुनहरिफ भी हुए और इमाम की जानिब से उनकी तकज़ीब की गई और उनकी जगह किसी दूसरे को फिर इमाम ने मुकर्रर किया। वकालत का जो निज़ाम था ये शियों की सियासी और फिक्री पोजीशन के इस्तेहकाम में बुनियादी किरदार अदा करता था। आइम्मा किराम के वकील आमतौर पर काबिल एतमाद अफराद के ज़रिए से खतूत के ज़रिए इमाम से राबता रखा करते थे। इन वकीलों का मकाम क्या था, काबिल एतमाद वकीलों का मकाम क्या था? इमाम ने अपने एक वकील अबू अली इब्ने राशिद के बारे में एक ख़त में उनकी अतात को इमाम और खुदा की अतात करार दिया। इमाम ने ख़त में तहरीर फरमाया, मैंने उनकी अतात को अपनी अतात करार दिया है, उनके हुक्म से नाफरमानी मेरे हुक्म से नाफरमानी है, बस इसी रास्ते पर रहो, खुदा तुम्हें अजर अता करे और तुम पर अपने फ़ज़ल में इजाफ़ा फरमाए। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये मिलता है कि इमाम ने शागिर्द तैयार किए थे और छठे इमाम ने उनमें से कुछ अफराद के बारे में, यानी पांचवें इमाम के जो शागिर्द थे उनके बारे में छठे इमाम ने ये फरमाया था कि अगर ये लोग ना होते तो कोई भी हमारे और हमारी अहादीस के बारे में नहीं जानता। ये हाफिज़ान दीन हैं और खुदा के हलाल और हराम किए हुए पर मेरे वालिद के काबिल एतमाद हैं। उन्हीं शागिर्दों में से कुछ अफराद का तारुफ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने शियों के लिए मर्जे की हैसियत से कराया था। एक शिया ने पूछा इमाम से, छठे इमाम से, कि जब कभी हमारे लिए कोई मसला पेश आए तो हम किसकी तरफ रुजू करें? इमाम ने फरमाया, तुम्हें अबू बसीर की तरफ रुजू करना चाहिए। बताने का मकसद यह है कि हर किसी के लिए बआसानी मुमकिन नहीं था कि वह इमाम से राबता कर सके, लिहाजा लोगों का इमाम से जो राबता होता था काबिल एतमाद असहाब और वकला के ज़रिए होता था और उनकी मुश्किलात भी हल की जाती थी। जिस ज़माने में आइम्मा को पाबंदियों में रखा जाता था और उनसे मिलने जुलने पर पाबंदी होती थी, हुकूमत के ज़ेर निगरानी होते थे, हर कोई जाकर इमाम से मुलाकात नहीं कर सकता था, तो वकला के ज़रिए और काबिल एतमाद असहाब के ज़रिए राबता होता और मुश्किलात हल होती थी। 12वें इमाम के ज़माने में गैबत सुग़रा में इमाम ने 4 नाइबीन मुकर्रर किए थे जो इमाम से राबते में थे, इमाम और लोगों के दरमियान राबते का ज़रिया थे, उनके ज़रिए मामला अंजाम पाते थे। और जब गैबत कुबरा शुरू हुई तो अब इमाम ने नाम लेकर नाइबीन मुकर्रर नहीं किए बल्कि सिफात बता दी गईं। किताब गुनाहाने कबीरा की पहली जिल्द में तौकीए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में लिखा है कि देखो तुम में से कौन ऐसा है जो हमारी अहदीसों की रिवायत करता है और हमारे हलाल और हराम पर उसकी नज़र है और हमारे अहकाम को जानता है, मैं उसको तुम पर हाकिम करार देता हूँ। जब वो हमारे अहकाम के बारे में हुक्म सादिर करे तो उसे कबूल ना करने वाला यकीनन हुक्म खुदा को हल्का शुमार करके उसका इनकार करता है। हमारे अहकाम से रूगिरदानी शिर्क बिल्ला की हद है। किसी भी दौर में अल्लाह ने इंसानों को बग़ैर रहनुमाई और रहनुमा के नहीं छोड़ा कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें करते रहें, अपनी ही पैरवी करते रहें। इमाम अलैहिस्सलाम की, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की काविशों में से एक कोशिश ये भी है कि आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम ने हमेशा कुरान को बुनियाद करार दिया। गालियों ने जो इनराफात पैदा किए थे उनकी वजह से दूसरे फ़िरक़ों की जानिब से शियों पर एतराज़ किए गए। उनमें एक मसला ये भी था जो इनराफात गालियों ने पैदा किए, उनमें ही एक ये मसला भी था तहरीफ़ कुरान का। ये वो मुश्किल है जिसमें अहले सुन्नत भी गिरफ़्तार हैं, जिसकी वजह यह है कि ख़ुद उनकी अपनी किताबों में तहरीफ़ कुरान पर मबनी झूठी रिवायात मौजूद हैं। हालांकि अक्सर मुसलमानों ने, जिनमें अहले सुन्नत और शिया दोनों शामिल हैं, इन्होंने इस गलत अकीदे की शिद्दत से मुखालफत की है। शिया आइम्मा ने हमेशा कुरान को बुनियाद करार दिया और उसके ख़िलाफ़ होने वाली हर रिवायत को बातिल शुमार किया, और कुरान को रिवायात की परख, सही या गलत हदीस की पहचान का सही तरीन मयार करार दिया। एक कानून बता दिया गया कि कुरान हदीस पर हाकिम है, जिस हदीस की तायीद किताब अल्लाह से न हो वो बातिल है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने भी इस बात का जिक्र किया कि पूरी उम्मत का इस बात पर इजमा है कि कुरान हक है और किसी फ़िरके को इस पर शक नहीं। इसके बाद फरमाते हैं, अगर कुरान किसी रिवायत की सेहत को तस्लीम करे लेकिन उम्मत का कोई गिरोह उसे कबूल नहीं करता तो भी उस रिवायत की सेहत का एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि सब लोग कुरान की हक्कानियत के उसूल पर मुत्तफिक हैं। यानी जिस रिवायत की तायीद कुरान से हो रही है और फिर कोई गिरोह उसको कबूल नहीं कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिवायत दुरुस्त तस्लीम की जाएगी, कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई है। आइम्मा किराम अलैहिस्सलाम का एक और अहम कारनामा दुआ और ज़ियारात की सकाफ़त को राइज करना है। शिया मकतब फ़िक्र दुआओं और ज़ियारात के अतबार से इंतहाई सरवतमंद है, और आप देखें किसी और इस्लामी फ़िरक़े के पास इस कदर दुआएँ ज़ियारतें नहीं जितना कि शिया मकतब के पास हैं। आइम्मा के दरमियान दुआओं को आला मकाम हासिल था और इमामों से बहुत सी दुआएं नकल हुई, जैसा कि इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम, पूरा सहीफ़ा सज्जादिया मौजूद है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने भी शियों की तरबियत और उन्हें शिया मारिफ से आगाह करने के लिए दुआ और ज़ियारत से अहम काम लिया है। इन दुआओं में खुदा से राज़ो न्याज के अलावा मुख्तलिफ़ सूरतों से बाज़ समाजी और दीगर मसाइल की जानिब भी इशारे मौजूद हैं। इसके अलावा इन दुआओं के ज़रिए अवाम और अहले बैत के दरमियान ताल्लुक़ क़ायम किया गया। इन दुआओं में बार बार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजने के अलावा उम्मत और आले मोहम्मद के दरमियान मज़बूत बंधन पर ख़ास ज़ोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर एक दुआ के कुछ जुमले हैं जिसमें अल्लाह से यूं दुआ की जा रही है कि बारे लहा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेज और दुनिया और आखरत में मेरे और उनके दरमियान रबते को मुनक़ता ना फरमा और मेरे आमाल को उनके वसीले से कबूल फरमा। इसके अलावा जो ज़ियारतें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से रिवायत की गई हैं उनमें अहले बैत के अजीम मकाम और उनकी क़यादत पर ताकीद की गई है, बारहा इस नुक्ते पे जोर दिया गया है, और अहले बैत रसूल की इन अल्फाज में तौसीफ़ की गई है कि रहमत के सरचश्मे, इल्म के ख़जीनादार, कौम के रहनुमा, बंदों के उमूर की सियासत तदबीर करने वाले, खुदाए रहमान के अमानतदार, हिदायत के पेशवा, अम्बिया के वारिस, अहले दुनिया की मौजूदा और आइंदा ज़िंदगी के लिए अल्लाह की तरफ से हुज्जत हैं। इसी तरह इस ज़ियारत में आइम्मा को मुखातिब करते हुए कहा गया कि मैं गवाही देता हूँ आप आइम्मा हिदायत याफ्ता हैं, मासूम हैं, मुकर्रम हैं, मुकर्रब हैं, साहिब तकवा हैं, सादिक हैं, बरगजीदा हैं, अल्लाह के मुती हैं। एक और हिस्से में ये ज़ियारात शियों को इस बात की तालीम देती हैं कि वो अपने आइम्मा को अजीम मंजिलत पर फ़ाइज़ समझें। मकतब अहले बैत पर ताकीद की गई है, लिहाजा उनके बारे में गवाही देते हुए कहा जा रहा है कि मैं गवाही देता हूँ आपने इस तरह जिहाद किया जैसा जिहाद करने का हक था, यहाँ तक कि दावत खुदावंदी को आशकार किया, अहकाम इलाही को वाजह किया, हुदूद इलाही का क़याम अमल में लाए, शरीयत इलाही को नशर किया और इलाही सुन्नतों को इस्तेवार किया, फसलुल खिताब और आयात इलाही आपके पास हैं, उसके सुतून आपके दरमियान हैं, सच्चे इलाही उलूम और मारिफ सिर्फ़ और सिर्फ मकतब अहले बैत रसूल ही से हासिल किए जा सकते हैं, और फिर इस सूरत में सिर्फ़ वो हक़ पर हैं जो इस पाकीज़ा ख़ानदान की तालीमात की पैरवी करें, जो नहीं करें वो दीन से निकल जाने वाले और राह हक़ से दूर हो जाने वाले हैं। गौरतलब बात है कि ख़ानदान रिसालत की पैरवी करें, सिर्फ मोहब्बत का दावा करना काफ़ी नहीं है, पैरवी ज़रूरी है, और मोहब्बत का लाजमी नतीजा पैरवी होता है। आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दुआओं और ज़ियारात के ज़रिए ज़ुल्म व सितम के ख़िलाफ़ भी जिहाद किया। इमाम से नक़ल होने वाली दुआओं में वाज़ेह तौर पर ये नुक्ता नज़र आता है। इमाम की एक दुआ है जिसमें ज़ालिमों के ख़िलाफ़ खुदा से मदद मांगी गई है, उसमें ज़ुल्म व सितम का खात्मा करना खुदा के सुपुर्द किया गया है, लेकिन दर हकीक़त इसका मकसद लोगों को माशरे में मौजूद ज़ुल्म व सितम और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों से आगाह करना भी है। लोग इस तरह आगाह हो रहे हैं कि इस वक्त माशरे में कौन कौन सी ज़ुल्म व सितम की शक्लें मौजूद हैं। और ये दुआ उस वक्त सादिर हुई थी जब मुतवक्किल की जानिब से इमाम पर ज़ुल्म हो रहा था और नाउज़ुबिल्ला इमाम की अहानत करने की कोशिश की जा रही थी।